दादाजी की बात सुनकर आस्था का चेहरा एकदम मुरझा गया। कल रात के घटनाक्रम की यादें उसकी आंखों के सामने फिर से घूमने लगीं और उसके हाथों में रोएं खड़े हो गए। उन चारों ने आस्था के डर को पहचान लिया था। दादाजी ने आगे कहा, बेटा, हमें पूरी उम्मीद है कि तुम दिल से इस परिवार को अपनाओगी। दादाजी की बात सुनकर आस्था ने उन चारों से नज़रें हटाकर पूरे घर को देखना शुरू कर दिया। कहने को तो पूरा घर महल जैसा था, लेकिन पूरी तरह से काले और गहरे रंगों में बना था। ये दिखने में थोड़ा डरावना, किसी भूत बंगले जैसा लग रहा था। आस्था के चेहरे पर उभरते सवालों को दादाजी ने देख लिया। वो जिस तरह घर के कोने कोने को देख रही थी और हल्का हल्का डर रही थी, उसे दादाजी ने समझ लिया। दादाजी ने कहा, हम अच्छी तरह जानते हैं कि घर की गहरी थीम तुम्हें पसंद नहीं आ रही होगी और तुम्हें एक भूतिया सा एहसास हो रहा होगा, लेकिन हम क्या करें, इस घर में अगर किसी का राज चलता है तो वो तुम्हारे पति मिस्टर अरमान सिंघानिया का चलता है, और हम चाहते हैं कि तुम उस अरमान सिंघानिया पर राज करो। क्या? आस्था पूरी तरह हैरान हो गई। कल रात की घटनाएं, अरमान द्वारा उस पर चलाई गई गोली उसे फिर याद आ गईं। वो आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी और उसके हाथ हल्के से कांपने लगे। एक बार फिर उसके हाथों के रोएं खड़े हो गए। ध्रुव ने आस्था को डरते हुए देखा और उसे शांत करने के लिए कहा, भाभी भाभी प्लीज, आप इस तरह से अरमान भाई से मत डरिए। मेरी बात ध्यान से सुनिए, उन्हें गुस्सा थोड़ा जल्दी आ जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि वो आपको कोई परेशानी नहीं होने देंगे, आपका ख्याल भी रखेंगे। हाँ, हम जानते हैं कि भाई थोड़े सख्त मिजाज के हैं और उन्हें लड़कियों से कुछ ज़्यादा ही नफरत है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आप उनकी ये सोच बदल दोगे और हम सब आपके साथ हैं। हम सब मिलकर आपको और अरमान भाई मिलाकर रखेंगे, इसलिए ज़्यादा फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। अरमान के मिजाज और लड़कियों से नफरत के बारे में सुनकर आस्था को काफ़ी डर लगा। वो मन ही मन सोचने लगी कि अरमान लड़कियों से नफरत क्यों करता है, इतनी ज़्यादा नफरत कि बंगले में कोई कामवाली तक नहीं है। शायद इसीलिए उसने उसे अपने कमरे में देखकर गोली चलाई थी। ये सोचकर आस्था का गला सूखने लगा। दादाजी ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, चुप करो नालायकों, इस तरह से बहू को डराकर कैसे अरमान के बारे में सोचेगी और कैसे अपनी गृहस्थी आगे बढ़ाएगी। बेवकूफ, इसे हौसला देना है, ना कि डराना है। और रही बात हमारी, तो हम आज हैं कल नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि जाने से पहले अपने पोते और आस्था को इस घर में सुकून से जिंदगी जीते हुए देख सकें, शायद तब हमारा गिल्ट कुछ कम हो जाए। दादाजी थोड़े उदास हो गए। दादाजी के गिल्ट की बात सुनकर आहान हैरानी से बोला, क्या बात है दादाजी, आप किस गिल्ट की बात कर रहे हैं और आप इतने उदास क्यों हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हम सबसे कुछ छुपा रहे हैं। सुमित, आकाश और ध्रुव भी दादाजी की उदासी भरी बातों से कन्फ्यूज्ड थे। सुमित आगे आया और बोला, ट्रस्ट मी दादाजी, यकीन करें, अरमान ने कल रात हमसे रूडली बात की, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी वो हमारा बचपन का दोस्त है और हमें उसकी आदतों के बारे में अच्छी तरह से पता है। तो फिर दादाजी आप क्यों गिल्ट की बात कर रहे हैं? आपकी आंखें कुछ और कह रही हैं। बताइए ना दादाजी, आखिर क्या बात है और आप किस गिल्ट की बात कर रहे हैं? आस्था ने अपना सर झुकाकर एक तरफ खड़ी हो गई। वो समझ गई थी कि दादाजी किस गिल्ट के बारे में बात कर रहे हैं। दादाजी आगे आए और आस्था के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन चारों का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उनके दादाजी उनकी भाभी के सामने हाथ जोड़कर क्यों खड़े थे? ध्रुव आगे आया और दादाजी के हाथों को पकड़कर बोला, आखिर बात क्या है दादाजी, आप इस तरह से भाभी के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? प्लीज हम सबको बताइए ना, आखिरकार बात क्या है? दादाजी ने उन चारों की ओर देखकर कहा, तुम चारों ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि हम जाकर भी तुमसे कुछ नहीं छुपा सकते, और हमें इस बात का गिल्ट है कि हमने आस्था बेटी को अरमान से शादी करने के लिए मजबूर किया। क्या? ये सुनकर उन चारों का मुंह हैरानी से खुला रह गया। वे चारों हैरानी से आगे आए और बोले, दादाजी ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो खुद अरमान भाई को लड़की दिखाने के लिए लेकर गए थे ना, तो फिर आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो और आस्था के सामने हाथ क्यों जोड़कर खड़े हुए हो? ये सुनकर आस्था के दिल में कुछ चुभन हुई और उसकी आंखों में भावनाएं उमड़ आईं। दादाजी ने आगे कहा, हम तुम लोगों को यही बात बताना चाहते हैं कि ये प्रियंका नहीं, आस्था है। प्रियंका तो शादी के दिन मंडप से भाग गई थी, तब हमें मजबूरन प्रियंका की जगह उसकी कजिन आस्था को मंडप में बैठाना पड़ा, वरना हमारे खानदान की ये सिर्फ मिट्टी में मिल जाती। दादाजी की बातें सुनकर वे चारों पूरी तरह से हैरान हो गए। उनके माथे से पसीना निकलने लगा। वे कहने लगे, आप अच्छी तरह से जानते हैं दादाजी, अगर अरमान को इस बात का पता चलेगा तो वो कितना ज्यादा गुस्से में हो जाएगा। अपने गुस्से में वो क्या कुछ कर सकता है। आप जानते हैं ना, उसे धोखा देने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, दादाजी ने कहा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अरमान को शायद ये बात पसंद ना आए, लेकिन हम क्या करते। उस वक्त हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए आज हम तुम लोगों को ये बात बता रहे हैं ताकि अरमान कोई गलत कदम ना उठा पाए। आहान ने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं दादाजी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अरमान ब्रो को जब इस सच का पता चलेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे और सबको गोली से उड़ा देंगे। ये सुनकर आस्था के गले में कुछ अटक गया। वो जोरों से खांसने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सभी जल्दी से आस्था को सोफे पर बैठाकर पानी पिलाने लगे। थोड़ा शांत होकर आस्था ने कहा, दादाजी आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं ये शादी कर लेते हूँ तो मेरे परिवार पर किसी तरह की कोई आंच नहीं आएगी। आहान भाई क्या कह रहे हैं कि आपके पोते मिस्टर अरमान सिंघानिया वाकई मेरे परिवार का कत्ल कर देंगे। दादाजी ने आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव की ओर इशारा किया। वे जल्दी से दादाजी की बात समझते हुए बोले, अरे भाभी आप ये कैसे बातें कर रही हैं। आहान तो सिर्फ मजाक कर रहा था। आप ये सब छोड़िए और बिल्कुल चिल कीजिए। आपको यहाँ पर किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और ना ही हम सब अरमान भाई को आपको हर्ट करने देंगे। डोंट वरी, आपके चार चार देवर यहाँ मौजूद हैं जो आपका ख्याल रखेंगे। आस्था ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, लेकिन अभी तो आप लोगों ने कहा कि आप सब अलग अलग रहते हो, केवल आहान जी ही यहाँ रहते हैं। आहान जी सुनकर आहान का मुंह खुला रह गया। वो जल्दी से आगे आया और हाथ जोड़कर आस्था के सामने खड़ा हो गया और बोला, भाभी एक बार फिर से आहान जी कहिए। आप नहीं जानते हैं भाभी, आज तक मैंने अपने लिए कामचोर, गधा, नालायक ऐसे ही शब्द सुने हैं, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे इतनी इज्जत दी है, मैं तो धन्य हो गया। भाभी आपके चरण कहाँ हैं। आहान आस्था के सामने झुक गया। आस्था दो कदम पीछे हट गई और उसकी हरकत पर हल्का सा मुस्कुरा उठी। दादाजी ने आस्था की ओर देखते हुए कहा, बेटा भले ही ये सब यहाँ ना रहते हों, लेकिन यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं रहते, आसपास रहते हैं। हमने तुम्हारे लिए नया फोन खरीदा है, ये लीजिए, इसमें हमने तुम्हारे इन चारों नारायक देवरों के नंबर सेव भी कर दिए हैं। जब भी तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े या तुम किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तुम्हें सिर्फ इन्हें बताना होगा और हमें पूरी उम्मीद है कि ये सब तुम्हारी हर परेशानी दूर कर देंगे। ये सुनकर आस्था ने राहत की सांस ली। दादाजी कुछ कहने लगे।